ओम शांति। भगवान के बच्चे, हम आप आत्माएं भाग्यवान आत्माएं हैं। वैसे तो सारी सृष्टि की आत्माएं भगवान के ही बच्चे हैं, लेकिन हम आप आत्माओं ने भगवान को पहचान लिया, इसलिए भाग्यवान बन गए, क्योंकि भगवान से ही भाग्य का वर्षा मिलता है। तो भगवान को पहचाना, भगवान के साथ संबंध जोड़ा, तो भाग्य का अधिकार मिल गया। इस मिले हुए अधिकार को आगे बढ़ाना भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनना, यह विशेष पुरुषार्थ अब हम आप ब्राह्मण आत्माओं का है। देखो, सौभाग्यशाली बनने में बहुत सुंदर एक विधि है। सौ में एक शब्द जोड़ दो ई, तो सौ बन जाता है शिव। अगर सा पर ई का मात्रा लगा दो तो सब शिव में बदल जाता है। तो हम आप सब अगर ई शब्द अपने जीवन में ले आए, ई शब्द अर्थात ईश्वरीय याद, ईश्वरीय स्मृति और ईश्वरीय सेवा, याद, श्रीमत और सेवा, ये तीन बातें ऐड कर लें तो सौभाग्यशाली सहस बन जाएंगे। ईश्वरीय याद, ईश्वरीय श्रीमत और ईश्वरीय सेवा। तो हम आत्माएं भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन जाएंगे जो हम आप आत्माओं का विशेष लक्ष्य है। सौभाग्यशाली अर्थात शिव बाप के समान बनना, ब्रह्मा बाप के समान बनना अर्थात सौभाग्यशाली बनना। लेकिन आत्मा इन तीन बातों को प्रैक्टिकल में जीवन में ला सके, ईश्वरीय याद निरंतर रहे, ईश्वरीय श्रीमत पर सदा चल सके और ईश्वरीय सेवा सदा करते रहें, इसके लिए आत्मा में शक्ति चाहिए, मनोबल चाहिए, विल पावर चाहिए, जिससे आत्मा प्रैक्टिकल में कर सके। तो इसका आधार है, आत्मा में विल पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, इसका आधार है अमृत बेला। अगर अमृत बेला समर्थ है तो सारा दिन स्वतः ही हम आत्माएं समर्थ रहेंगी ही। जैसे देखो बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग जो आप बनाएंगे उस बिल्डिंग के द्वारा आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बनाओ लेकिन उस बिल्डिंग से सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि वो दुख देने वाली ही बन जाएगी। ऐसे अगर अमृत बेला आपका पावरफुल नहीं है, समर्थ नहीं है, तो दिन में आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करे, समर्थ स्थिति की अनुभूति के लिए निरंतर बाबा की याद रहे या हम निरंतर श्रीमत पर चल सके, ये नहीं हो सकेगा। अगर अमृत बेला समर्थ नहीं है तो जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कभी गिर सकती है, दुख दे सकती है। ऐसे अगर अमृत बेला आपका पावरफुल नहीं है तो सारा दिन समर्थ बनना तो छोड़ो और श्रीमत की अवज्ञा हो जाएगी, कुछ भूल भी हो सकती है, कोई विकर्म भी हो सकता है। इसलिए अमृत बेले को समर्थ बना लो तो सौभाग्यशाली सहस बन जाएंगे। वैसे तो बाबा की याद किसी समय भी कर सकते हैं, लेकिन अमृत बेले जो विशेष प्राप्तियां हैं वो और किसी समय याद में नहीं है। जो विशेष प्राप्ति अमृत बेले है वो और किसी समय नहीं है। विज्ञान भी ऐसा कहता है कि सुबह का समय 4 घंटा ऐसा होता है जिसमें ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति सारे दिन के अपेक्षाकृत सुबह ज्यादा होती है। तो अगर आप सुबह थोड़ा गहराई से बाबा को याद कर लो या कोई भी बात का चिंतन कर लो तो उसके स्वरूप सहज बन जाओगे, क्योंकि उस समय आत्मा के अंदर ग्रहण करने की पावर स्वतः ही है। अमृत वेले योग में 5 प्रकार का फायदा है जो और किसी समय योग करने में नहीं है। पहला, वायुमंडल सतो प्रधान होता है। अमृत वेले के समय वायुमंडल सतो प्रधान होता है। दूसरा है, आत्मा सारी रात नींद करके उठी है इसलिए फ्रेश है, तो फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है। तीसरा है, अमृत वेले कोई कार्य का संकल्प नहीं है, उस समय कोई कार्य व्यवहार नहीं है, इसलिए आत्मा सब कुछ भूलकर एक बाप के याद में समा सकती है, क्योंकि और कोई संकल्प नहीं है। और चौथा है, बाप की आज्ञा की पालना करने के कारण भगवान की दुआएं हैं, दुआएं बहुत मदद देती है। और पांचवा है, जो अमृत वेले उठकर रोज बाबा को याद करता है वो सतयुग के आदि में 111 में आएगा। तो सतयुग के आदि में 111 में आने का आधार अमृत वेला योग है। तो पहली बात, वायुमंडल सतो प्रधान होता है। वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। जैसे आप लोग अपने देश से, गांव से यहां आए हो, यहां का वायुमंडल आपके मन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हर एक को अनुभव हो रहा है, मन शांत रहने लगा है, मन के अंदर खुशी उत्पन्न हो रही है, बाबा की याद सहज रहने लगी है, ये सब वायुमंडल का प्रभाव है। तो वायुमंडल का प्रभाव स्वतः पड़ता है। सुबह 1 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत सुंदर सतो प्रधान वायुमंडल। इस वायुमंडल को सतो प्रधान कहा गया है। सतो प्रधान वायुमंडल में आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति को सहज प्राप्त कर सकती है, क्योंकि वायुमंडल सतो प्रधान होने के कारण आत्मा में भी दिव्यता रहती है। वायुमंडल का प्रभाव है, दिव्यता के कारण अपनी थोड़ी सी भी कमी ज्यादा महसूस होने लगती है, और उस कमी को खत्म करने का उस समय गहरा संकल्प चलता है। है ऐसा अनुभव, जो कमी आपको सारे दिन के अंदर कमी महसूस नहीं होती है, वो सुबह के समय कमी महसूस होती है। मान लो आप सारे दिन के अंदर कहीं गुस्सा किया या कुछ भी गलती की, उस समय आपको उतना रिलाइज नहीं होता है, लेकिन जब योग में बैठते हो सुबह, तब वो गलती बहुत भारी महसूस होती। उसका कारण है वायुमंडल सतो प्रधान होने के कारण आप आत्मा की बुद्धि भी दिव्य है। वायुमंडल का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ रहा है, इस कारण से थोड़ी भी गलती ज्यादा महसूस होती है। जैसे एक कलर्ड कपड़ा पहनो, एक सफेद कपड़ा पहनो, तो रंगीन कपड़े पर कुछ मिट्टी पड़ जाए, कुछ लग जाए, तो उतना महसूस नहीं होता है, और सफेद कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी लग जाए तो दिखाई देने लगता है, ज्यादा महसूस होता है। तो सुबह आत्मा दिव्य होने के कारण जो थोड़ी भी गलती है वो भारी महसूस होती है। इसलिए सबसे बड़ा फायदा है अमृत वेले के समय वायुमंडल का सहयोग। इस समय आप लोग यहां आए हुए हैं, यहां तो कुछ घर की जिम्मेदारी नहीं है, यहां आप लोग 10 बजे क्लास पूरा होता है, 10:30 तक सो जाओ, 1 बजे या 2 बजे उठ करके योग का अभ्यास करो। जो आप यहां 5-6 दिन जितना दिन भी रहते हैं, आप कमाई जो कर सकते हैं वो घर में 1 साल में भी नहीं कर सकते। क्यों? वायुमंडल का सहयोग है, यहां और कोई काम नहीं है। आपका मन बाबा की तरफ खुद ही खींचेगा। आप उठ करके देखो इसी संकल्प से कि मुझे कमाई करनी है, बाबा को याद करना है, यह संकल्प लेकर सो। सुबह जैसे आंख खुलती है, आप देखेंगे कि आपके मन की खींच बाबा की तरफ होने लगेगी। तो पहली बात वायुमंडल का सहयोग है। दूसरी बात है, आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, इसलिए फ्रेश है। लेकिन सुबह फ्रेश वो होंगे जो सतो प्रधान नींद में सोए हुए होंगे वो। अगर सतो प्रधान नींद में नहीं सोए हैं तो सुबह उठते ही आपका माथा भारी होगा। कई देखो सुबह सोकर उठते ही माथा हल्का होता है और कईयों को देखा होगा कि सोकर उठते ही उबासी लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे हाथ पैर करते हैं। ये सब माथा भारी की निशानी। ये क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि सतो प्रधान नींद में नहीं सोए थे, रजो या तमो की नींद में सोए थे। तो रजो या तमो की नींद में सोने वाला उठते ही वही बातें याद आएंगी और उसी बातों का प्रभाव स्वप्न में भी पड़ता है। जिन बातों के स्मृति में सोए हैं तो सतो प्रधान नींद का आधार दो है। एक, जब आप सोते हैं तो सारे दिन का चार्ट बाबा को देकर अवश्य सो। अगर चार्ट नहीं देंगे तो जरूर सारे दिन के अंदर कुछ न कुछ श्रीमत की अवज्ञा हुई है, भूल हुई है, उसका प्रभाव स्वप्न पर और सोकर उठते ही आएगा। तो चार्ट देना अर्थात भूल गलती जो कुछ भी हुई उसको जलाकर खत्म कर देना। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। मान लो आप अपने घर की सफाई करो, पूरा घर साफ करके और कीचड़े को घर के किसी पीछे कोने में छोड़ दो। क्या घर के पीछे कोने में जो कीचड़ा पड़ा है उस कीचड़े से क्या होगा? मच्छर पैदा होंगे और वो मच्छर किसको काटेंगे? जिसका घर है। भल आपने कीचड़ा कोने में छोड़ा है लेकिन मच्छर तो पूरे घर में फैल जाएंगे ना। ऐसे सारा दिन भल आपने अटेंशन दिया है लेकिन फिर भी भूल या गलती कुछ होती ही है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो बाबा को बताना अर्थात कीचड़े को जलाना। जब कीचड़ा जल ही गया तो राख को क्या करना है? सागर में फेंक दो, राख भी नहीं रखो। अर्थात चार्ट दे करके अब बाबा आप जानो, आपका काम जाने, राख भी सागर में फेंक दो। चार्ट दे करके फिर ये नहीं सोचो कि पता नहीं बाबा ने माफ किया या नहीं किया, ये ऐसा हुआ या हुआ नहीं। दिया जलाया, सब सागर में फेंक दो, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो पहली बात चार्ट देना और दूसरी बात बाबा की याद में बाबा के गोद में सो जाना, चारपाई पर नहीं, बाबा मां की गोदी में सो जाना। बाबा को याद करते करते बाबा की गोद में सो जाओ, वो नींद सतो प्रधान नींद होती है। उस नींद में या तो आपको स्वर्ग दिखाई देगा, अपना घर दिखाई देगा, या बाबा से रू रिहान करते हुए अनुभव होगा, या हो सकता कुछ साक्षात्कार भी हो जाए। तो बाबा की याद में सोना ये है सतो प्रधान नींद। ऐसे नहीं सोना, लेकिन बाबा को याद करते करते सोना। चलो बाबा के पास। और तीसरी बात है कि आत्मा को उस समय कोई कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं है। सारे दिन के अंदर तो कर्म की जिम्मेदारी रहती ही है। आप कितना भी भूलना चाहो, लेकिन जो कर्म की जिम्मेदारी है वो बार बार याद आ ही जाती है। लेकिन सुबह कर्म की जिम्मेदारी न होने के कारण आत्मा निःसंकल्प स्थिति को प्राप्त कर सकती है। बाप में समा सकती है। बस आप और बाप दोनों मिलकर एक हो सकते हैं। यह अनुभव का समय अमृत बेला ही है। और यह अनुभव बड़ा सुखद अनुभव है और सारे दिन के लिए बहुत बड़ी टॉनिक मिल जाएगी, ताकत मिल जाती है। तो अमृत बेला निःसंकल्प स्थिति सहज बन सकती और चौथी बात है, भगवान की आज्ञा का फल, भगवान की दुआएं आपको बहुत आगे बढ़ा देगी। जिसको भगवान की दुआ मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उसका तो बेड़ा स्वतः ही पार हो जाएगा। और दुआ या आशीर्वाद लेने का आधार ही है आज्ञाकारी बनना। आप लौकिक में भी देखो, सब माता पिता ही बैठे हैं कि आपके घर में दो तीन बच्चा हो, एक बच्चा बहुत तेज बुद्धि वाला है, बहुत धन कमाता है, लेकिन आपका कहना नहीं मानता है, अपनी मर्जी से चलता है, और एक बच्चा है जिसकी बुद्धि कम है, पैसा भी कम कमाता है, लेकिन आपका पूरा कहना मानता है, दोनों में किसके प्रति आपकी दुआएं निकलेंगी? किसके प्रति निकलेगी? जो आज्ञाकारी है उसके लिए सदा दिल से यही निकलता रहेगा कि भगवान इसकी भी बुद्धि तेज हो जाए, ये भी कमाने लगे, ये भी लायक बन जाए। सदा उसके लिए दिल से दुआ निकलती रहेगी, आज्ञाकारी। तो भगवान से भी दुआ लेने की विधि यही है, आज्ञाकारी बनना। और आज्ञाकारी में सबसे पहली आज्ञा अमृत बेले उठकर बाप को याद करो, सबसे पहली आज्ञा है। दिन का आदि यही है, दिनचर्या की आदि यही है। तो अगर सोकर उठते ही भगवान की इस आज्ञा की पालना कर ली, तो भगवान की दुआएं क्या नहीं कर सकती? सिर्फ भगवान की दुआ लेने के निमित्त बन जाए बस। और वो दुआ लेने की विधि है आज्ञाकारी में भी विशेष आज्ञा क्या है, आप थोड़ा ध्यान देकर, मुरली तो सुनते हैं, ध्यान देना मुरली में। बाबा चार से पांच योग के लिए तो मुख्य आज्ञा ही है, उठना ही है, लेकिन कई बार बाबा मुरली में कहता है एक बजे उठो, दो बजे उठो, तीन बजे उठो। अब ये जो कभी शब्द कहता है, अगर उसको प्रैक्टिकल में ले आओ तो देखो भगवान के दिल पर कितना जल्दी चढ़ जाओगे। क्योंकि बाबा प्यार सबको करता है, लेकिन दिल से प्यार उसी को करता है जो बाबा की हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करता है। अब बाबा मान लो कल मुरली में कहता है एक बजे उठो, दो बजे उठो, मान लो कहता है, अब अगर उठ जाओ तो देखो कितनी दुआएं बाबा देता है। और अगर आप उसी रूटीन पे ही चलो जैसे चल रहे हैं, तो प्यार तो करेगा लेकिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जैसे नॉर्मल मिलता है उतना ही मिलेगा। और पांचवा है कि जो रोज सुबह उठकर योग करते हैं वो सतयुग के वन 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 में आएंगे। देखो 72 की मुरली में बाबा ने कहा था समय का महत्व, उस मुरली में बाबा ने शब्द कहा है अमृत वेले के महत्व के बारे में कि जो बच्चा यहां जितनी देर से उठता है वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा यहां जितना घंटा लेट उठता है वो सतयुग में उसका जन्म उतना कम होगा। और जो अमृत वेले योग करता ही नहीं है वो सतयुग में आ ही नहीं सकता है। अब आप अपने से देखो कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से आज तक अमृत वेले का योग मिस किया है या नहीं, किसी भी कारणवश 4 से 4:45। हां, जिसने योग नहीं मिस किया हो जब से ब्राह्मण बने तब से आज, हाथ उठाओ। नहीं मिस किया है किसी भी कारण से है, कुछ मुबारक हो, उनका तो आना निश्चित है। अच्छा, जिसका मिस हो गया है वो क्या करेंगे? वन 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 में नहीं आना है, वन 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 में नहीं आना है, आना है तो आज से एक काम करो, आप लोग क्लास पूरा होने के बाद बाबा के कमरे में जाकर बाबा को पत्र लिखो, माफी मांगो कि बाबा आज तक जाने अनजाने में जो भी हुआ हो गया बाबा माफ करना, अब आज से हम कभी अमृत वेले का योग मिस नहीं करेंगे। और इस प्रतिज्ञा के साथ कभी मिस नहीं होने दो तो वन 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 में आ जाएंगे। मंजूर है पांडव? मंजूर है शक्तियां? मंजूर है ना? ये मुबारक हो, आज से पक्का कर लो। कई बच्चे ऐसा है कि 2 बजे या 1 बजे उठते हैं, 4 बजे तक योग करके फिर सो जाते। देखो, 4 बजे से पहले योग करना, इसको कहा जाएगा ओवर टाइम करना। ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है, प्राप्ति ज्यादा है। लेकिन ओवर टाइम तब कहा जाएगा जब ड्यूटी का टाइम जो है 8 घंटा, उस 8 घंटा करने के बाद करेंगे उसको ओवर टाइम कहा जाता है। तो जो 4 से 5 योग का टाइम फिक्स है उसको भी करना है। अगर वो छोड़ करके 2 बजे योग किया तो वो ओवर टाइम नहीं हुआ, वो पार्ट टाइम हुआ। पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है, इसलिए 4 से 4:45 तक योग अवश्य करना है। यह पाठ पक्का करो अमृत वेले का। आप इस महत्व को समझो, जो सुबह योग में 4 से 4:45 जो योग में अगर सर्व प्राप्तियों का आप अनुभव करते हो तो सतयुग के आदि में सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा, अर्थात महाराजा के राज घराने में ही रहेंगे, जिसको बाबा रॉयल फैमिली कहता है। प्राप्ति संपन्न राज मिलेगा। अगर सुबह योग में उठते हैं, कभी सर्व प्राप्तियां होती हैं कभी नहीं होती हैं, तो शुरू से ही सर्व प्राप्ति संपन्न में नहीं आओगे। अगर आप रोज उठ रहे हैं लेकिन सर्व प्राप्तियां नहीं हो पा रही हैं, तो सतयुग के 111 में अवश्य आओगे लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न राज नहीं करोगे। बल्कि क्योंकि शुरू की आबादी कितनी है, 9 लाख है ना, तो 9 लाख में आ जाओगे, राज घराने में नहीं लेकिन राजधानी में आओगे, लेकिन 111 में आओगे। तो इसलिए विशेष लक्ष्य रखो कि सुबह उठना भी है और सर्व प्राप्तियां हमें बाबा से करनी भी है। अमृत बेले के महत्व को थोड़ा सोचो, क्यों अमृत बेला सौभाग्यशाली बनाने का समय है। अमृत बेले के समय बाप और दादा दोनों बच्चों की विशेष पालना करते। अमृत बेले के समय ब्रह्मा बाबा का क्या स्वरूप होता है और शिव बाबा का क्या स्वरूप होता है। अमृत बेले ब्रह्मा मां, जैसे आपने लौकिक में देखा है कि सुबह सुबह मां बच्चे को नहला धुला करके, खिला पिला करके और साथ में खाना और दे देती है, जब तक बच्चा स्कूल से वापस आए तब तक के लिए मां उसे समर्थ बनाकर भेजती है। ऐसे अमृत बेले ब्रह्मा मां क्या करती है। अमृत बेले ब्रह्मा मां जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे स्नेही बच्चे को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके इष्ट्रा सकाश देती है, इष्ट्रा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। जैसे कल की मुरली थी कि बाबा सकाश देता है, सर्च लाइट देता है, करंट देता है, किसको, जो बच्चा सेवाधारी बच्चा था, अनन्य बच्चा था, जो बच्चा बाप को याद करता है, बहुत याद करता है, उसको बाबा करंट देता है, सकाश देता है, सर्च लाइट देता है। तो ऐसे जिस बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चे को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके सकाश देती है। सर्च लाइट देती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। दूसरी बात, अमृत बेले ब्रह्मा मां का रूप बड़ा स्नेही रूप होता है। उस समय आप ब्रह्मा मां कहो या पिता कहो, ब्रह्मा बाप से आप स्नेह के आधार से अपने भाग्य की रेखा जितनी लंबी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा बाप का रूप स्नेह का है, हिसाब किताब वाला नहीं कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका भाग्य इतना ही है, इस बच्चे ने यह गलती की है इसलिए इसका इतना ऊंचा पद नहीं है, यह सब बातें नहीं है। उस समय ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप से बहुत स्नेही रूप में होता है। उस समय स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो, ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप से उतनी लंबी रेखा खींचने के लिए तैयार बैठा है। आधार स्नेह और अमृत बेला। अमृत बेले के समय ब्रह्मा मां से स्नेह के आधार से भाग्य की रेखा खिंचवा सकते हो। शिव बाबा का अमृत बेला कौन सा रूप होता है? ब्रह्मा बाप से तो भाग्य की रेखा खिंचवा सकते हो, शिव बाप का अमृत बेला भोलानाथ का रूप होता है, भोले भगवान का रूप होता है। उस समय शिव बाबा का रूप धर्मराज का नहीं है, भोले भगवान का है। उस समय अर्थात अमृत बेले स्नेह के आधार से शिव बाबा से अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, अर्थात क्षमा ले सकते हो। उस समय शिव बाबा भोलेनाथ भोले भगवान के रूप में होने के कारण आपके सभी पापों को क्षमा कर देंगे। देखो अमृत बेले का महत्व कि अमृत बेले भगवान से इतना बड़ा काम करा सकते हो। जो योग लगाते लगाते थक जाते हैं लेकिन पाप नहीं खत्म होता है, वो भगवान भोलानाथ के रूप में स्नेह के आधार से सहज खत्म करा सकते। अमृत बेले के समय शिव बाबा ज्ञान सूरी बनकर सब बच्चों की विशेष किरणों की पालना करता है। जिस किरणों की पालना से दो बातें होती है, एक किरणों से विकर्म खत्म होते, कीटाणु नष्ट होते हैं, बुराइयां खत्म हो जाती है। दूसरा उस पालना से आत्मा समर्थ बन जाती। ये विशेष अमृत वेले बाप और दादा अर्थात मात और पिता दोनों विशेष पालना दे रहे होते। तो अमृत वेले के महत्व को समझकर अमृत वेले को समर्थ बनाओ। वैसे भी अमृत वेला शब्द ही कितना अच्छा है, अमृत फिर वेला, वेला मतलब समय, यही समय है जो आत्मा भगवान से सोमनाथ बाबा से सोम रस अर्थात अमृत लेकर अमर बन सकती है। अगर सुबह नहीं ले पाए, अगर सुबह आप शरीर से टोटल न्यारे होने का अनुभव नहीं कर पाए, तो सारे दिन के अंदर कितनी भी मेहनत करो न्यारे नहीं बन पाओगे। इसलिए इस समय को आप जितना सफल कर सकते हो सफल कर लो, तो सारा दिन तो अपने आप ही चलता रहेगा। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था, देखो ट्रेन जब चलती है, जिस ट्रेन में आप लोग आए हैं, कोई ट्रेन कोई प्लेन, तो जब ट्रेन चलती है तो देखो जब शुरू में चलती स्टार्ट होती है तो इंजन को मेहनत लगती है खींचने में, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो इंजन चलना बंद कर दे तो भी काफी दूर तक ट्रेन चली जाएगी। ऐसे अमृत वेले फल थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर अमृत वेले आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ले तो सारे दिन के अंदर निमित्त मात्र अटेंशन देने से ट्रेन चलती जाएगी, आपका पुरुषार्थ चलता जाएगा। कल करके देखना कि कितना सहज हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात है कि ट्रेन स्पीड पकड़ ली है, लेकिन अगर डब्बा पटरी से उतर जाए तो वही खड़ी हो जाएगी, इंजन वहीं छोड़ देगा। ऐसे अगर अमृत वेला आपने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली है, लेकिन सारे दिन के अंदर दो पटरियां हैं, जैसे ट्रेन दो पटरियों पर चलती है, उस पर अपने को सारा दिन चलाते रहोगे तो आपका पुरुषार्थ निमित्त मात्र अटेंशन देने से चलता रहेगा। वो दोनों पटरियां कौन सी हैं पांडव, कौन सी दोनों पटरी है? शक्तियां। अच्छा, वो दोनों पटरी है श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत और दृढ़ संकल्प सारे दिन के अंदर संकल्प मात्र भी स्वयं को श्रीमत से अलग नहीं करना। अगर श्रीमत को छोड़कर मन मत प्रमाण संकल्प भी चलाया तो आपका इंजन बाप दादा है, उससे शक्ति मिलना बंद हो जाएगी, आपका पुरुषार्थ वहीं रुक जाएगा। इसलिए अमृत बेले आत्मा को समर्थ बनाओ और सारे दिन के अंदर इन दो पटरियों पर चलाते रहो, श्रीमत और दृढ़ संकल्प, तो आप आत्मा सौभाग्यशाली अर्थात बाप समान सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।